ओम शांति। ये गीत सब गाते होंगे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, मेरा बाबा। तो कल जैसे भी मैं मुरली सुनती थी, मेरी बुद्धि में जब मम्मा ने ये सुल दे त्याग किया, वो भी स्मृति आ गई। बाबा जब अव्यक्त हुए वो भी याद आ गई, और ये प्रथम अव्यक्त बाप दादा से जो मिलन था वो भी मेरी बुद्धि में आ गया। आप सबको मालूम होगा कि शुरू से यज्ञ में कहते थे कि मम्मा बाबा अंत तक हमारे साथ रहेंगे। इसलिए क्या हुआ कि जब मम्मा को 64 में डायग्नोस किया कैंसर है, और 65 में एंड तक डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब मम्मा ज्यादा दिन नहीं रहेंगी, हम कुछ यहाँ बंबई में कर नहीं सकते हैं, उनको जहां भी शरीर त्याग करना है ले जा। और 4 जून को बंबई से ले गए, परंतु जब डॉक्टरों ने कहा कि मम्मा ज्यादा समय नहीं रहेंगी, क्योंकि भाव विश्व किशोर उन दिनों में जब भी मम्मा बाबा बंबई आते थे ट्रीटमेंट करने, जहां भी जाते थे तो भाव साथ में जाते थे, तो जब उसने सुना ये बात, ये कहते हैं असंभव है, मम्मा हमारे साथ हमेशा रहेंगी। परंतु मम्मा को मधुमन ले आए और मम्मा ने 24 जून 65 में शरीर त्याग किया। परंतु बाबा के बच्चे विशेष रमेश भाई गीत गाते थे, हो जाने वाले मुसाफिर हो सके तो लौट के आ जाना, धरती को आकाश पुकारे आजा आजा प्रेम दुलारे, ये गीत गाते रहे। और ब्रह्मा बाबा भी ने एक दो बारी संदेशी को भेजा कि जाओ बाबा को कहो कि अभी मम्मा की बच्चों को जरूरत है, उनको वापस भेजे। तो शिव बाबा कहे अभी शरीर पुराना जर्जरीभूत हो गया है, अभी मम्मा आ नहीं सकती। फिर भी बाबा दादी को कहता था किसी बच्चों की माँ नहीं मरे, किसी बूढ़े की युगल ना मरे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, नहीं तो मम्मा काफी कारोबार संभाल लेती थी। परंतु बूढ़े बाबा पर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, और उसको फिर बड़ी माँ का पार्ट बजाना पड़ा और बजाया भी। अभी 18 जनवरी का आपको सीन तो मालूम होगा कि कैसे सवेरे बाबा को थोड़ा छाती में दर्द था, मुरली नहीं सुनाई। फिर रात को कहा अच्छा आज बच्चों को सवेरे मुरली नहीं सुनाई है, मैं सुनाने जाऊंगा। तो हिस्ट्री हॉल में आया, मुरली सुनाई, और अंत में निराकारी निरंकारी निर्विकारी भव विदाई लेता हूँ करके छुट्टी ली और कमरे में गए, दर्द हुआ, हार्ट अटैक आया और शरीर छोड़ा। अब दादी प्रकाशमणि सामने थी, उसने क्या किया, मेन सेंटर पर फोन किया, जैसे बंबई में ब्रिजेंद्रा दादी को फोन किया, दिल्ली में ऑलराउंडर दादी को, कानपुर में गंगे दादी को, ऐसे नीचे साउथ में हृदय पुष्पा दादी को, ऐसे मेन सेंटर पर फोन करके बताया कि आप सभी को बता दो, अपने नजदीक के सेंटर वालों को बता दो। तो इसी रीत से रात को ही सबको संदेश दिया। तो रात को करीब 9:45 बजे ब्रिजेंद्रा दादी का मेरे पर फोन आया। दादी कहती है, निर्मला ड्रामा पर अडोल हो। फिर समाचार सुना है कि बाबा अव्यक्त हो गए हैं। तो हम तीनों बहनें थी सेंटर पर, तो तीनों योग में बैठ गई और हमारी दो साथियों ने नक्की किया कि सवेरे पहली ट्रेन में जाएंगे। जो भी बंबई वाले थे उन्होंने सवेरे की पहली ट्रेन ली आबू आने की। उन दिनों में हम लोग, चाहे मम्मा जब देह त्याग किया, चाहे ब्रह्मा बाबा देह त्याग किया, उन दिनों में हम इतना फ्लाइट से नहीं चलते थे, इसलिए मम्मा के टाइम तक इतना दौड़ भाग करके, टैक्सी करके, इधर से उधर जाके, ट्रेन पकड़ के, फिर बराबर टाइम पर मुंबई वाले स्मशान में पहुंचे। परंतु ब्रह्मा बाबा का देह का तो 3 दिन तक हिस्ट्री हॉल में रखा था। जनवरी का मास था, ठंडी थी, तो देह खराब होने की संभावना कम थी, तो 3 दिन तक देह वहां रखा और नहीं चली। उस समय 700 लोग पहुंच गए 21 तारीख तक। और मैंने और शीलेंद्रा दादी ने बंबई में नक्की किया कि सब चले जाएंगे सवेरे, स्टूडेंट्स आएंगे, उनको कौन आश्वासन देगा। इसलिए मैंने कहा मैं तो जल्दी नहीं जाएंगी, शील दादी भी बैठी थी। परंतु फिर दादी प्रकाशमणि ने हम लोगों को फोन किया कि अभी आ जाओ। तो मैं और शील दादी 21 तारीख, जब सारा, क्योंकि बाबा के अस्थि को सारे आबू में ले गए, सभी को दर्शन कराया, फूलों से सजाकर उसमें लेकर सारे आबू में चल प्रदर्शनी की और फिर अंत में यहाँ जहाँ टावर ऑफ पीस है वहाँ ले आया। काउंसिल से स्पेशल छुट्टी मांगकर यहाँ ही अंतिम संस्कार किया। तो उस समय तो मिट्टी की जमीन थी, फर्श नहीं तैयार था, तो सभी आसपास यहाँ तहाँ बैठे थे और मैंने देखा कई भाई रो रहे थे। जैसे कल बाबा ने कहा मैं गंगा जमुना बरस रही थी, कई भाई, बड़े बड़े भाई रो रहे थे। और नेचुरली है मेजोरिटी ने आंसू बहाया, सिवाय के प्रकाशमणि दादी ने और बंबई की निर्मल शांता दादी ने भी नहीं और ब्रिजेंद्रा दादी। तो ब्रिजेंद्रा दादी और निर्मल शांता दादी ने तो अंत तक आंसू बहाया नहीं, परंतु प्रकाशमणि दादी का लास्ट दिन 21 को गद्दी पर बैठकर आंसू बहाया। और जब दादी रोई तो ने चली गद्दी से, सारे क्लास रोने लगा। तो सभी को बहुत संकल्प था कि अभी क्या होगा, बाबा नहीं है क्या होगा, यज्ञ कैसे चलेगा। और सबसे ज्यादा चिंता थी मैं हमारी मुरली कैसे मिलेंगी, मुरली तो हमारा प्राण है, मुरली नहीं मिलेंगी कैसे चलेगा। तो शाम को जब बाप दादा आया और बाबा ने सब क्लियर किया कि मुरली रिवाइज करनी है, दीदी दादी संस्था के हेड रहेंगी और गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आएंगे, बस ये पहली मुरली के बाद सभी शांत हो गए। फिर भी मैं समझती हूँ 22 तारीख को हम लोगों ने मीटिंग की, क्योंकि 18 को ही ये म्यूजियम खरीदा था अहमदाबाद में, रमेश भाई ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो सभी सीनियर्स बैठे और सोचने लगे क्या करेंगे, क्या हम सेवा शुरू करेंगे या नहीं। सभी ने कहा क्यों, बाबा अव्यक्त हुआ, सेवा क्यों बंद करनी है, जरूर करनी है। तो इसलिए फिर निर्णय किया कि सेवा चालू रखेंगे। और जब दादी ने देखा कि ये सब पहली मुलाकात से सब इतने हल्के हो गए हैं, तो जो ना भी आए थे उनको भी टेलीफोन टेलीग्राम करके बुलाया कि आ जाओ मधुबन में, चक्कर लगाकर हल्के होकर जाओ। तो इसी रीत से देखा गया कि किसी की कल्पना भी नहीं थी कि बाबा अव्यक्त इतना जल्दी हो सकता है। और जैसे कहा, कई लोग तो मानते ही नहीं थे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि मम्मा बाबा अंत तक रहेंगे, कैसे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। तो कल बाबा ने हमें होमवर्क दिया। कौन सा होमवर्क दिया, कि आपने तो ये सब बाबा से लाभ लिया, परंतु सारा विश्व कहे कि वाह हमारा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ये सब मतलब बाबा को हमें प्रत्यक्ष करना है सारे विश्व में, ये जिम्मेवारी बाबा ने हमको दी है, बड़ा काम दिया है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। बाकी क्या है कि अंत में बाबा 8-10 जनों से 10-15 मिनट रूहान कर रहे थे, नेचुरली के सारी सभा बिचारी सिर्फ दादियों की एक्टिविटी और बाबा की एक्टिविटी देखते थे, सुनने में नहीं आता था, इसलिए कईयों को अच्छा नहीं लगा। और हर टाइम कंप्लेन रहती है कि ये थोड़े लोगों को सब बाबा बात करते हैं, कैमरा सारा सबको ढक देते हैं, हम बाबा को भी देख नहीं सकते हैं, परंतु रस्म जो चली आई है थोड़ा मुश्किल छूटता है। तो आपको मालूम होगा कि 3 दिन तक दादी इतनी बीमार थी कि जैसे दादी को बीच बीच में पेट दर्द, गैस आदि आदि होता है, जलन होती है छाती में, तो 3 दिन तक था। और उसी समय 7 बजे दादी कल तैयार हुई स्नान करके। तो दादी को भी बाबा को अटेंशन देना था, तो दादी भी घड़ी घड़ी कहे मेरी छाती पर हाथ रखो, और नीलू कहे बाबा दादी को प्यार करो, तो बाबा दादी के माथे हाथ रखता था, हाथ में हाथ लेता था, छाती पर हाथ रखता था कि दादी खुश हो जाए। दूसरा, रतन मोहिनी दादी भी 1-2 दिन ट्रोमा सेंटर में रही थी, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और सोडियम लेवल भी कुछ बदली हो गया था, तो इसलिए वो भी ट्रोमा में थी और ट्रोमा से आई थी। इसलिए बाबा ने उनको भी अटेंशन दिया, बहुत प्यार किया, सिर पर हाथ रखा, ऐसे बाबा ने दोनों दादियों को प्यार किया। फिर मैंने भी अपनी तबीयत का समाचार सुनाया कि बाबा मेरी तबीयत सूली से कांटा हो गई, हम सोचते थे ज्यादा सीरियस बीमारी होंगी पर इतनी सीरियस बीमारी नहीं है। तो बाबा ने कहा मुबारक हो, सबकी तरफ से मुबारक हो। और फिर ब्रिजमोहन भाई ने समाचार सुनाया कि कुरुक्षेत्र का लक्ष्मण भाई, मैं समझती हूँ 20 साल से कोशिश कर रहा है ये सोनीपत की जगह गवर्नमेंट से हम लेवें, तो 20 वर्ष से जो ट्राई करता था अभी 1-2 हफ्ता पहले गवर्नमेंट ने हमको वो लैंड दी। तो उसका शुभ समाचार ब्रिजमोहन भाई ने सुनाया और आशा बहन ने सुनाया कि बाबा ओआरसी को 15 साल पूरा हुआ, 16 चल रहा है। तो बाबा ने कहा उनको मुबारक हो, उनको आशा बहन को डायरेक्शन देता दिया कि कुछ नवीन करते रहो, ऐसे नहीं कि थोड़ा सुस्त होकर बैठ जाओ। तो समझो बाबा ने कहा सेवा करते रहो, मंग में उल्लास में रहो, नवीनता लाओ। बाबा हमेशा हरेक को कहते हैं कुछ सेवा में नवीनता लाओ। तो आशा बहन को भी कहा कि कुछ नवीनता लाओ। और आपको मालूम है सारा ऑडिट अकाउंट उसका भी काम बहुत बड़ा हो गया है। मैं समझती हूँ अभी तक ललित भाई ने 58 सर्कुलर सेंटर पर भेजे हैं, ये अकाउंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, ये नहीं करना है आदि आदि। इसलिए निर्वेर भाई ने ललित भाई को भी बाबा के सामने लाया और बाबा ने ललित भाई और निर्वेर भाई को कहा कि आप मिलकर सब देखभाल करना, क्योंकि रमेश भाई भी बीमार है 2 हफ्ते से, वो भी तो आईसीयू में है। तो इसलिए ललित भाई का तो वो बड़ा सहारा अभी है नहीं, इसलिए निर्वेर भाई को थोड़ी जिम्मेवारी दी। तो ऐसी छोटी छोटी पर्सनल यज्ञ की बातें थी, तो इसलिए बाबा उन सभी से बात करते थे और अंत में बाबा ने कहा गुड नाइट और आप सभी को हाथ हिलाकर छुट्टी ली। तो इस रीति से कल का जो बाबा मिलन था मैं समझती हूँ, सभी खुश हो गए। दृष्टि भी पावरफुल दी तो साथ साथ मुरली भी चलाई और जो बीमार वगैरह सीनियर्स थे सबको खुश किया। अभी जो बाबा ने होमवर्क दिया है कि सब कहे मेरा बाबा, अर्थात बाबा को प्रत्यक्ष करो, तो उसके लिए हमें क्या होमवर्क करना है वो अभी हम देखें। तो जैसे बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या करना पड़े, बाप समान बनना पड़े। और शिव बाबा तो है ही ऊंचते ऊंच, परंतु हमारे सामने ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल था कि साकार सृष्टि में रहकर, लौकिक अलौकिक परिवार के बीच में रहकर, इस समाज में रहकर उन्होंने अपना जीवन ऐसा आदर्श बनाया। तो इसलिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, बाप समान बनना है। तो बाबा की विशेषता क्या थी, प्यार का सागर। हम लोग देख सकते थे बाबा का इतना अतुट प्यार है, इतना निष्पक्ष प्यार है, इतना अनकंडीशनल प्यार। क्योंकि आज हम लोग प्यार करेंगे, कहेंगे ये बहुत अच्छा है, हमको बहुत मदद करता है, इसलिए मैं उसको प्यार करता हूँ। तो समझो हम लोगों का प्यार ऐसा होता है कंडीशनल, परंतु बाबा का प्यार, जैसे बाबा कहते हैं तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। जो भी बच्चा है, जैसा भी है, जानता भी है बाबा कि ये बच्चे ने पास्ट में क्या किया है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की परखने की शक्ति रियली बहुत तेज थी। कोई खूनी है, लुटारू है, बाबा परख लेते थे। 5 मिनट में कोई सामने आया और टीचर बहन उसका बहुत प्रशंसा करेंगी, बाबा ये बहुत अच्छा है, सर्विसेबल है, फलानी सर्विस की, फलानी सर्विस की, तो टीचर बहन महिमा करेंगे। उसके जाने के बाद फिर बाबा कहेगा ये बच्चा चलने वाला नहीं है, अर्थात भविष्य समझ जाता था। अभी मुझे भी खास कोई, मैं बाबा से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, ज्यादा मिलती नहीं थी, साल में 1-2 बार ही मिलना होता है था, मधुबन आना होना था। परंतु मेरी जो मुझे बाबा ने परखा, मैं खुद अपने आप को नहीं जानती थी, बाबा ने परखा। परंतु बाबा जानते हुए भी ये कौन है, कैसा है, क्या है, उसको प्यार करते थे और सब समझते थे बाबा मेरे से जितना प्यार करता है शायद किसी से नहीं करता होगा, ये फीलिंग आती थी। अभी मेरा लौकिक माँ बाप से प्यार था, विशेष मेरे पिताजी मुझे अपनी विशेष लाडली बच्ची समझकर चलता था, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में होशियार थी तो मेरे से विशेष प्यार था। परंतु बाबा से मिलकर मुझे अपने लौकिक पिता से भी ज्यादा प्यार रहा, और जो भी कुछ मुझे रहा है सलाह लेनी थी मैं बाबा से लेती थी। क्योंकि कई बार मेरे पिताजी की एक इच्छा होती थी, मेरी दूसरी इच्छा होती थी, तो मैं बाबा के पास जाकर पूछती थी बाबा क्या करूं। जैसे मेरे लौकिक पिताजी की इच्छा थी कि मैं कांदिवली बंबई में ही प्रैक्टिस करूं, मेरा विचार था कि मैं गांव में जाकर प्रैक्टिस करूं, तो मैंने ब्रह्मा बाबा से पूछा बाबा क्या करूं। तो बाबा कहता है अभी कांदिवली भी तो गाना है ना, कांदिवली में करो। मतलब लौकिक बाप को भी खुश किया और प्रैक्टिस भी शुरू कराए। तो इसी रीत से बाबा का जो प्यार था वो अतूट और बेहद का प्यार था। उनकी दृष्टि बेहद की थी। हमें भी ऐसा करना है ना। सब मेरे बच्चे हैं, चाहे कोई भी है, क्योंकि अभी भी बाबा कहते हैं मुझे सबको मुक्ति या जीवन मुक्ति देनी है, सबका कल्याण करना है, सबको संदेश दो। तो बाबा चाहे मिनिस्टर है तो भी बच्चे कहता था, चाहे चिड़िया थी तो भी बच्चे कहता था, चाहे कोई भी होता था, बच्ची बच्ची बच्ची। तो बाबा रोज है सर्दी के दिनों में अपनी पोस्ट वगैरह पूरी करके 10:30-11 बजे झोपड़ी में बैठता था, और उसी समय एक चिड़िया आती थी। तो बाबा लच्छू को कहता था, लच्छू बेटा इस बच्ची को टोली दो। तो रोज टोली भी देता था, तो वो रोज चिड़िया उसी समय आती रहती थी। और किसी भी मजदूर को रास्ते में देखता था कि उनके पास गरम नहीं है, तो फौरन कहता था, लच्छू बेटा इसको जरा कुछ स्वेटर दो, शॉल दो। या आज भी आप देखते हैं कि यज्ञ में हर विंटर में मजदूरों को हम ब्लैंकेट देते हैं। वो रस्म बाबा ने शुरू की, दादी ने चलाई, और अभी यज्ञ में वो चलती रहती है। फिर बाबा को ज्ञान मंथन करने की बहुत आदत थी। सारा दिन ज्ञान मंथन करते रहते थे। जैसे बाबा हम लोगों को कहते हैं ना कि ज्ञान का घास गाय जैसे बैठकर घास खाकर चबाती रहती है, ऐसे तुम बच्चों को भी ज्ञान का मंथन करके दूध निकालना है। तो खुद भी करता रहता था, और जो भी आता था ना बाबा के सामने कुछ न कुछ पॉइंट सुनाता था। रास्ते चलते चलते भी कुछ न कुछ पॉइंट किसी को मिलता था तो सुना दिया। पर सिर्फ ज्ञान मंथन नहीं करते हैं, मम्मा बाबा ने ज्ञान पूरा धारण किया, एक एग्जाम्पल बन गए। क्योंकि हमारा ये भी मुख्य सब्जेक्ट है धारणा, गुण स्वरूप बनकर औरों को गुणवान बनाना। तो बाबा ने भी अपनी धारणा से हम सभी को अपना बनाया और हमारे से बेहद का कार्य करवाते हैं। और आप हिस्ट्री देखी होंगी कैसे बाबा अडोल अचल थे। विघ्न आए, बेगरी पार्ट आया, सिंधी समाज ने खूब सामना किया, पिकेटिंग की, सब कुछ किया, पर बाबा अपने जो रीति रसम रवाज ज्ञान था उससे हिले नहीं। समाज कहे पवित्र बनने की शिक्षा नहीं दो, कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि घर गृहस्थ में पवित्र रहो, पर बाबा ने क्या किया, कहा ये तो भगवान कहता है मैं कैसे ना कहूं। जब राजनेता ने किसी को भेजा, क्योंकि जब इंडिया चाइना की वॉर हो रही थी, तो क्या हुआ, कि बाबा ने मुरली में कहा कि ये भारत और पाकिस्तान जमीन के टुकड़े के लिए क्यों लड़ते हैं, जमीन के टुकड़े के लिए नहीं लड़ना चाहिए। तो किसी पॉलिटिशियन के हाथ में आ गई तो उन्होंने अपना मैसेंजर भेजा कि ये कैसे मुरली में आपने ऐसे कहा। तो बाबा क्या कहते हैं, मैंने थोड़ी कहा है, ये तो ऊपर वाले ने कहा है। मतलब विघन आए, कई लोग कई कई मोटिव से आए, कईयों का बाबा का खून करने का भी मोटिव था, परंतु बाबा का प्यार देखकर वो लोग ने अपना लक्ष्य बदल दिया और भी बाबा के सामने माफी मांगी कि बाबा ये हमारे से भूल हो गई। तो बाबा अचल अडोल एक रस रहे। और बाबा की विशेषता ये थी कि प्यारा भी जितना था इतना नष्ट मोहार था। लौकिक परिवार साथ में था और अलौकिक परिवार भी था, साथ में 400 थे, उसमें बाबा की लौकिक युगल और बच्चे भी थे, निर्मल शांता दादी, ब्रिजेंद्रा दादी, नारायण आदि सब यज्ञ में थे, छोटी भी, तो सब यज्ञ में थे, परंतु उनकी दृष्टि वृत्ति जैसी अन्य दादियों के तरफ ऐसी ही अपने लौकिक परिवार की। कोई नहीं समझ सकता था कि ये इनका लौकिक है इसलिए ज्यादा उसको फेवर करते हैं, उनको ज्यादा सहूलियत देते हैं, नहीं, सबको समान। और अंत में भी जब अव्यक्त हुए, निर्मल शांता दादी को गद्दी नहीं मिली, ब्रिजेंद्रा दादी को नहीं मिली, दीदी दादी को मिली। और आपको मालूम हो कि बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट कर दी थी, और ट्रस्ट करने के पहले अपने लौकिक बच्चों से पूछा कि ये मेरा इच्छा है कि मेरी सब प्रॉपर्टी यज्ञ के नाम पर ट्रस्ट पर रख देवे। तो बच्चों ने कहा, भले बाबा आपकी कमाई है, जैसे आपको करना है करो, तो इसलिए ट्रस्ट पर रख दी। अभी कुछ साल के बाद, बेगरी पाठ के बाद, नारायण को दिल हुई कि चलो अभी जाकर संसार में जाएं और संसार देखें। और यज्ञ में रहती एक बहन ज्योति करके थी, उसके साथ दोनों का आपस में प्यार हो गया, तो दोनों चले गए यज्ञ छोड़ के। तो नारायण ने बाबा को कहा, मैं जाता हूं। मामा ने कहा, भले जाओ, 5 रुपया दिया, आबू टू अहमदाबाद टिकट। कहा कि मेरा तो कुछ है नहीं, ये तुम यज्ञ में कुछ लाया नहीं, जो यज्ञ में लाए वो तो मांग कर ले गए कि बाबा हम इतना लाए थे हमको दो, तो बाबा ने दे दिया। परंतु नारायण तो कुछ लाया नहीं था, तो इसको कहा कि भाई ये तुम्हारी खर्ची है, अभी तुम जाकर अपना भाग्य बनाओ, इतना नष्ट मोह, नहीं तर अपना बच्चा भल यज्ञ छोड़ के जाता है तो कोई आम आदमी होता तो कहता था कम से कम बम्बई की टिकट ले जाओ, क्योंकि सारा धंधा व्यापार सब बंबई में होता है, परंतु नहीं, अहमदाबाद तक की टिकट। फिर बाबा को बड़ा निश्चय था कि कल जाकर मैं कृष्ण बनूंगा। तो जैसे हिस्ट्री हॉल में लक्ष्मी नारायण का और कृष्ण का चित्र सामने था, तो मुरली कहते करते भी नशे से बोलते, कल जाकर मैं ये बनूंगा। तो इस रीत से निश्चय और नशा कि मैं नंबर वन बाबा का सिकिलधा बच्चा हूं, तो इसी रीत से नशा भी था। क्योंकि कई बार कई लोग हम लोगों को कहते हैं, आप लोगों को तो अभिमान है कि आप सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु भूषण हो, सबसे ऊंचे हो। तो हम कहते हैं ये हमारा अभिमान नहीं है, नशा है। अभिमान कब कहें? जब देहभान हो। और अभिमान वाला क्या करेगा? दूसरों का इंसल्ट करेगा, मैं तो बहुत ऊंची हूं, तुम तो शूद्र हो, नीचे हो, पापी हो, आदि आदि। परंतु हम तो कहते हैं हम तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण है, पर तुम भी आकर बनो, देखो हम आए हैं तुमको हमारे जैसे बनाने के लिए। तो ये है हमारा नशा। तो ये देखना है, आज भी बाबा ने कहते कल हम जाके विश्व के मालिक बनेंगे। नशा हो कि बाबा आया है हमको विश्व का मालिक बनाने। फिर बाबा के पास एक नामी और इकोनॉमी थी। बाबा हमेशा बाबा 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 करता रहता था। जब लच्छू भी बाबा को तैयार करती थी, मालिश करती थी, याद दिलाते हैं तुम किसको मालिश करती हो? शिव बाबा के रथ को। याद दिलाता था कि तुम मुझे नहीं करती है, ये शिव बाबा का रथ है। और आप देखेंगे मुरली में भी कभी बाबा मैं नहीं कहता इसको, ये गांव का छोरा था। तो मैं शब्द बाबा बहुत अवॉइड करते रहे, ये ऐसे करके करते थे। तो एक नामी और इकोनॉमी, क्योंकि बाबा हमेशा क्या समझते थे कि यज्ञ का कारोबार इकोनॉमी से चले। अभी आपको मालूम है कि यहाँ आबू में तो कोई फ्रूट नहीं बनते हैं, वेजिटेबल्स भी मिनिमम दो चार ही बनती है आबू में, बाकी सब अहमदाबाद बंबई दिल्ली से आते हैं। विशेष बाबा के समय में बंबई दिल्ली से फ्रूट आदि आदि भेजते थे। तो जो फ्रूट लाने वाली होती थी ना, वो बाबा के सामने फ्रूट रखती थी। तो बाबा देखता था क्वालिटी कैसी है, कितना दाम दिया है। बाबा को ये पक्का मालूम रहता था कि किस फ्रूट की प्राइस क्या होनी चाहिए इस समय। तो यदि किसी ने प्राइस ज्यादा दी है तो भी बाबा कहता है कि आप अच्छे ग्राहक नहीं हो। कभी कभी बुद्धू का टाइटल, हजाम का टाइटल दे देते थे। तो इकोनॉमी पर उदार भी इतने। अभी भी देखो, कल भी रात को जो जो भाई बाबा को मिले, स्पेशली सीनियर भाई, एक पिस्तौली नहीं दी, तीन चार पिस्तौली। और रमेश भाई को तो कई बार इतना इतना लेके मुंह में डालते थे। तो इसलिए उदार भी। मैं भी जब पहली बारी बाबा के पास आई तो बाबा ने मुझे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है, कितने हैं? हर एक के लिए गिफ्ट दी। फिर बाबा की ये भी विशेषता थी, निरंतर योगी। या तो ज्ञान का मंथन करते थे या तो योग में रहते थे निरंतर। और अथक सेवा, 93 की उम्र थी परंतु सवेरे अमृत वेला से बिजी रहते थे और सेवा का बहुत उमंग उल्लास। जैसे आज भी हम मंदिर मुरलियों में पढ़ते हैं, बाबा कहेंगे मंदिरों में जाओ, स्मशान में जाओ, गंगा तट पर जाओ, ऐसे पर्चे छपाओ, सबको बांटो, ये संदेश दो सबको। तो बाबा मुरली द्वारा भी हम बच्चों को उत्साहित करते रहते हैं कि सेवा करो, सेवा कर दो। कभी भी आप देखेंगे जो भी ग्रुप आएगा, बाबा कहता सेवा में नवीनता लाओ, कुछ नया प्रोग्राम बनाओ। तो अभी भी बाबा नवीनता लाने के लिए युक्ति बताते रहते हैं और हमें प्रेरणा देते रहते हैं कि नई दुनिया के लिए सब कुछ नया चाहिए। ऐसे नहीं पुराना ही चलाते रहो, छोटी मोटी प्रदर्शनी ही करते रहो या मेला ही करते रहो, नहीं कुछ नया करो। और बाबा नहीं, नॉलेजफुल, योगी, पावरफुल, ज्ञानी, हर्षित, पावरफुल बहुत थे। विघ्नों का सामना बहुत सहज रीति से किया। पावरफुल ना होते तो एक रस अडोल नहीं रह सकते, क्योंकि सामना बहुत करना पड़ा। तो हर प्रकार की शक्ति थी, स्नेह की, सहयोग की, समेटने की और समाने की, सब शक्तियां बाबा में थी। और जैसे मैंने बताया, विशेष परखने की और निर्णय करने की शक्ति, क्योंकि परखने की शक्ति श्रेष्ठ है, वो भी बाबा में थी। और बाबा चलते फिरते जैसे ऐसे लगते थे अव्यक्त फरिश्ता। कोई भी चलते फिरते देखते थे तो समझता था जैसे ये इस दुनिया का नहीं है, जैसे हम लोग भी है। आज कहाँ भी होते हैं, यूनिफॉर्म ना भी पहना हो तो हमारा चेहरा देखकर सब समझ जाएंगे कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है। विशेष एक दिन अपने एक बहन अनुभव सुनाती है, अमेरिका से आ रही थी और अपना ब्राह्मण ड्रेस नहीं पहना था। उसने सोचा पता नहीं कस्टम वाले कुछ विघन डालेंगे कुछ, क्योंकि ब्राह्मण समझते हैं तो ओम शांति करके छुट्टी कर देते हैं, पर ना जानने से कुछ चेकिंग वगैरह करेंगे। परंतु उसको आश्चर्य हुआ, वो कस्टम ऑफिसर कहता है ओम शांति सिस्टर, मतलब चेहरे से समझ में आता है। और उनकी स्थिति ऐसी थी जो उनको देखकर ज्यादातर लोगों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो हमारी स्थिति भी ऐसी अव्यक्त फरिश्ता और देवी होनी चाहिए जो उनको अपने इष्ट देव देवी का दर्शन हो। तो ये अभी हमको धारणा करनी है प्रत्यक्षता के लिए कि हमारी स्थिति इतनी पावरफुल अव्यक्त हो। बाबा समान में रहकर सबको सम्मान देते थे। आज भी आज या कल का स्लोगन था ना, रिगार्ड दो, सबको रिगार्ड दो, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे समान हैं, सबको रिगार्ड चाहिए, सबको प्रेम चाहिए। तो बाबा सबको रिगार्ड देते थे, हमारी दादी जी भी, हम कोई भी भाई बहने आते थे, इतना प्यार से रिगार्ड से मिलती थी। मुझे देखकर दादी कहेंगे, आओ डॉक्टर, डबल डॉक्टर आओ, कभी निर्मला नहीं, निर्मला बहन करके। तो इस रीत से क्या है, सम्मान देना। और हमारा मुख्य सब्जेक्ट तो है ही पवित्रता का, तो इसलिए हमें रियली अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि देही अभिमानी रखकर भाई भाई की पवित्र दृष्टि, वृत्ति और कर्तव्य रहे। बहुत अटेंशन देना है कि हमारे साधारण कर्म न चले, हमारे व्यर्थ संकल्प न चले, हमारा व्यर्थ बोल ना हो, शुभ भावना और शुभकामना हरेक के लिए रहे। तो जितनी हमारे में पवित्रता की धारणा होगी ना, औरों को आकर्षण होगा। और बाबा और प्रकाशमणि दादी, उनका हमेशा लक्ष्य रहता था कि हमें ऐसा कर्म करना है क्योंकि तो और भी हमें देखकर फॉलो करेंगे। मुझे याद है जब शुरू शुरू में ब्लैंकेट निकले थे विदेश में, जिस ब्लैंकेट में हम अपने आप को लपेट लेवें और ठंडी ना लगे, तो विदेश से हम लोग ले आए दादी के लिए कि यहाँ ठंडी बहुत है, तो स्लीपिंग बैग कहते हैं, उस स्लीपिंग बैग में दादी सोएंगी तो दादी को ठंडी नहीं लगेंगी। तो जब हमने दादी को दिया, दादी कहती है मैं यूज नहीं कर सकती हूँ, मैं ये यूज करूं तो यज्ञ के जो भी समर्पित भाई बहने हैं उनको भी मुझे देना पड़े, इसलिए मैं यूज नहीं करूंगी। एक बारी हमने दादी जी से कहा कि दादी जी आप बाहर का किसी का पकाया हुआ खाएंगे, आपको उसका असर होगा? तो दादी कहती है नहीं, जैसे हम है दूसरों का पकाया हुआ नहीं खाते, ब्राह्मणों का भी, जो ब्राह्मणों की अवस्था जरा ऊपर नीचे होती है, घरों में रहते हैं, हम उनके घर का खाते नहीं है। तो हमने दादी से पूछा, दादी आप खाएंगी तो आपके ऊपर असर होगा? दादी कहती मेरे पर असर नहीं होगा, पर मैं खाना शुरू करूंगी तो सब खाना शुरू करेंगे, इसलिए मैं किसी का घर का पकाया हुआ खाना नहीं खाती। तो इसी रीत से बाबा भी क्या था कि बाबा सबकी दिल रखता था, कोई भी, क्योंकि कई लोग बाबा के लिए कुछ न कुछ खाना पका के मिठाइयां बना के लाए रहते थे, कोई बाबा के लिए स्वेटर बुन के लाते थे खास कि बाबा मैं आपके लिए ये ले आई हूँ। तो बाबा क्या करते थे, स्वीकार कर लेते थे, परंतु बाबा को डायबिटीज होता था तो इतना इतना ही खाते थे। और स्वेटर भी देखता था कि यदि माता का थोड़ा मुंह है तो समझता था कि ये मुंह वाली चीज मुझे नहीं पहननी है, ले तो लेता था परंतु पहनता नहीं था। तो इसलिए बाबा ने अपना जीवन ऐसा आदर्श बनाया। तो जितना हम अपने पर अटेंशन रखकर, अपना पूरा चार्ट रखकर, अपने में ये सब शक्तियां धारण कर बाप समान बनना है, ये लक्ष्य हम भूले नहीं और लक्ष्य रखे सदा उड़ती कला में रहना है। जैसे संडे की वाणी में बताया कंट्रोलिंग पावर मन का बढ़ाना है, एकाग्रता बढ़ानी है और मन में संकल्प शक्ति का बहुत जमा करना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। इस पर बहुत अटेंशन रखना है कि हमारी संकल्प शक्ति साधारण व्यर्थ ना हो, तभी तो हम शक्तियां जमा कर सकेंगे। इसलिए जो भी बाबा ने हमें अमूल्य खजाने दिए हैं, कोई भी व्यर्थ न जाए, कोई भी साधारण रूप से न यूज हो, सबको बहुत अटेंशन से जमा करके औरों को दान देना है, तो उससे भी हमें दुआओं का खजाना मिलेगा और हमारी स्थिति ऊंची आएगी। तो इसलिए जो हमारा लक्ष्य है वो भूलना नहीं है, क्योंकि आजकल क्या होता है, हम बिजी हैं, स्पेशली विदेश में घर भी संभालना है, खाना भी पकाना है, जॉब भी करना है, सेवा भी करनी है, इतना सब होते हुए क्या है कि खुद पर अटेंशन नहीं रहता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम अपने ऊपर इतना अटेंशन रखें जो शक्तियां जमा करते जाए, अपनी अवस्था बाप समान बने, तभी तो हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो इसलिए बाबा ने हमें ये एक बड़ा कार्य दिया है, हाँ? कल की मुरली से तो ये अभी हमें इस वर्ष बहुत ध्यान रखना है। बाकी आजकल की जो हिंदी मुरली आ गई है उसमें तो अव्यक्त स्थिति में कैसे रहना है उस पर समझाने दी गई है, तो नेचुरली वो आपको अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन होकर मिलेंगी। तो इसलिए अव्यक्त स्थिति बनाने का भी अपना पुरुषार्थ चालू रखना है और देखना है समय थोड़ा है, पुरुषार्थ तेज करना है और एवर रेडी रहना है। जैसे आज बाबा ने बताया ना कि हर घड़ी जो तैयार रहते हैं, एवर रेडी, तो ये हमारा लक्ष्य हो। ओम शांति। 5 मिनट बाबा को याद करेंगे, पीछे पूरा करेंगे। ओम शांति।